HD Smartcast।
आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
इमरान खान को चिढ़ा रहे पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तनाव के बीच पहुंचे ISI के दफ्तर। इमरान खान सरकार से ISI के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर जारी टकराव के बीच सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सोमवार को खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां ISI के महानिदेशक फैज हमीद ने खुद बाजवा की अगवानी की। कहा जा रहा है कि बाजवा यहां आंतरिक सुरक्षा और अफगानिस्तान के हालातों के मद्देनजर ISI की तैयारियों का अपडेट लेने आए थे। इसी के प्रमुख से बातचीत के बाद बाजवा ने एजेंसी की तैयारियों पर संतुष्टि जताई। हालांकि माना जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा का ISI के दफ्तर आना इमरान खान को संदेश देने के लिए भी था। कई दिनों से सरकार और सेना के बीच ISI के चीफ को बदलने को लेकर तनाव का दौर जारी है। ISI के प्रमुख के पद से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाकर उनकी जगह नदीम अहमद अंजुम को कमान दिए जाने का ऐलान पिछले दिनों सेना प्रमुख ने किया था। हालांकि इस संबंध में अब तक PM ऑफिस की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे साफ है कि सरकार और सेना के बीच इस मसले को लेकर खींचतान जारी है। यही नहीं, खुद इमरान खान ने कहा था कि वह चाहते थे कि मौजूदा हालात में जनरल हमीद को ही ISI का प्रमुख रहने दिया जाए। कश्मीर के बड़े हिस्से में पांव पसार चुका कट्टरपंथ, आतंकियों को मिल रहा खाद पानी, सतर्क हुई एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़े आतंकवादी हमलों को लेकर एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। एजेंसियों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में कट्टरपंथ तेजी से पांव पसार चुका है। यह भी एक बड़ी समस्या बन रहा है और इससे आतंकवादियों को खाद पानी मिल रहा है। नए अंदाज में हमले और आतंकी गतिविधियों में गैर प्रशिक्षित लोगों के शामिल होने के पीछे जमात और वहाबी विचारधारा के जबरदस्त प्रसार को माना जा रहा है। एजेंसियां मान रही हैं कि कश्मीर के बड़े हिस्से में कट्टरपंथ अपने पांव पसार चुका है। घाटी में वहाबी विचारधारा का प्रसार करने के लिए पाकिस्तान ने कई तरीकों से पूरा जोर लगाया है। कई अन्य कट्टरपंथी विदेशी ताकतें भी इसके पीछे हैं। खुफिया इनपुट भी इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर में ताजा चुनौती आतंकवाद के साथ मजहबी कट्टरपंथ है। इसके लिए मोहरे के तौर पर सोशल मीडिया में प्रभाव रखने वाले कई समूहों के इस्तेमाल पर एजेंसियों की नज़र है। जिहादी आतंकी कश्मीर में आम लोगों, अल्पसंख्यकों और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। इस भय के कारण प्रवासी मजदूर लगातार पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले RSS ने बुलाई अहम मीटिंग, BJP के सीनियर नेता भी लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अहम मीटिंग बुलाई है। इस समन्वय बैठक में भाजपा समेत अपने तमाम आनुषांगिक संगठनों को RSS ने बुलाया है। मंगलवार को शुरू हो रही यह मीटिंग 2 दिन तक चलने वाली है, जिसमें चुनाव के अलावा कई नीतिगत मुद्दों को लेकर भी बात हो सकती है। भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष के अलावा पार्टी के कई और सीनियर नेता एवं केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। भाजपा के अलावा RSS से जुड़े कई और संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। RSS और भाजपा के प्रतिनिधियों के बीच अक्सर होने वाली इन बैठकों में सरकार के साथ समन्वय और नीतियों को लेकर फीडबैक पर बात की जाती है। इससे पहले पिछले महीने भी RSS ने 4 दिन लंबा एक सेशन आयोजित किया था, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बात हुई थी। उस मीटिंग को RSS के काडर को चुनाव के लिहाज से तैयार रहने और भाजपा के लिए जीत की राह तैयार करने को कहा गया था। मंगलवार को शुरू हो रही मीटिंग का वक्त काफी अहम है। अब त्रिशूल और वज्र की मार से भागेंगे चीनी सैनिक, भारतीय सेना को मिलेंगे पारंपरिक हथियार। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर नुकीले तार वाली छड़ों व बिजली के झटके देने वाली बंदूक का प्रयोग किया था। इसके बाद अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प होने की स्थिति में चीन की सेना के इन हथियारों से भारतीय सुरक्षा बल त्रिशूल, व्रज जैसे पारंपरिक हथियारों से निपट सकेंगे। गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत व चीन सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद नोएडा की एक स्टार्टअप फर्म अपेस्टरॉन प्राइवेट लिमिटेड ने यह गैर घातक तैयार किए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से उन्हें चीनी सेना के हथियारों से निपटने में सक्षम उपकरण प्रदान करने का काम सौंपा गया था। फर्म के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मोहित कुमार ने कहा कि जब चीनी सैनिकों ने गलवान में तार की छड़ें और टेसर इस्तेमाल किया था, इसके बाद भारत ने गैर घातक उपकरण के लिए कहा था। आज मोदी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, इन खास चीजों से है लैस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मोदी वैन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के सरकार में 20 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी इस मिशन की शुरुआत कर रही है। मोदी वैन का शुभारंभ सेवा की संगठन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। पीएम मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। बता दें कि इस विशेष वैन को कौशाम्बी विकास परिषद से संचालित किया जाएगा। इसे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर चला रहे हैं। सोनकर ने बताया, ऐसी 5 वैन कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित की जाएंगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वैन होगी। इन्हें एक कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। सोनकर ने कहा कि प्रत्येक वाहन में पीएम मोदी के मासिक मन की बात रेडियो पते के साथ साथ उनकी सार्वजनिक रैलियों और भाषणों को प्रसारित करने के लिए 32 इंच की टेलीविजन और हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।